هو الذي خلق السماوات والأرض، آسمانوں اور زمین کو اس نے پیدا کیا، اور آسمانوں کو، صرف یہ کہہ دینا آسمانوں کو پیدا کیا، آسمانوں ایک ورڈ ہے، السماوات، او ہو، السماوات کو اگر آپ کھوجنے لگے، اس کو کھولنے لگے، انسان تو یعنی اس کی عقل تھک جائے گی، لیکن وہ آسمانوں کے بھید نہیں جان سکتا، وہ پہنچ ہی نہیں پایا بیچارہ انسان، اس کی تو اتنی عقل ہی نہیں ہے یہ یہاں تک پہنچے، بس لائٹ ایئرز کر کے، اتنی گیلیکسیز ہیں، اتنی بڑی کائنات ہے، وہ پھیلتی جا رہی ہے، نئی نئی باتیں روز ان کو پتہ چل رہی ہیں سائنسدانوں کو، وہ یہ سارے کس نے پیدا کیا؟ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا. نہیں، آپ نے اللہ کا تعارف کرانا ہو، آپ نے بتانا ہو وہ اللہ کون ہے، آپ نے لوگوں کو سمجھانا ہو کہ کیوں وہی عبادت کے لائق ہے، تو یہ بتائیں. دیکھیے ایسے نہیں بن گئے، یہ کچھ شاید سوچتے ہیں کہ حادثہ ہو گیا، کوئی بن گئے، حالانکہ اس نے فی ستت ایام ان کو بنایا، چھ دنوں میں. چھ دنوں کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی جلدی نہیں بنا سکتا تھا تو چھ دن لگ گئے اس کو بناتے بناتے، نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو کلمہ کن سے ساری کائنات کو پیدا کر سکتا ہے، اور مفسرین کہتے ہیں سبحان اللہ کہ کن بھی ایک کلمہ ہے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ہماری عقل میں اتنی بات آ سکتی ہے نا، تو ہمیں ایک چھوٹا سا ایک کلمہ بتایا گیا کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ جب ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ کن کہتا ہے تو پھر ہوتا ہے، اللہ کا ارادہ کرنا ہی اس چیز کے لیے کافی ہے، اس کو بننے کے لیے، اس کو کوئی بولنے کی ضرورت نہیں، کہنے کی ضرورت نہیں، اس کا ارادہ کرنا ہی کافی ہے. تو چھ دن کا ذکر کر کے بتا دیا کہ یہ اللہ نے بڑے اہتمام سے پیدا کیا ہے، بڑی بامقصد طریقے سے پیدا کیا ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، اس کا جو سارا نظام ہے، اس کے پیچھے جو ساری اس کا اندازہ ہے، اس کی جو ساری ٹیکنیکلٹیز ہیں، ساری اللہ تعالیٰ نے بڑے تمام سے بنائی ہیں. ماں تو رافی خلق الرحمانی من تفاوت، تمہیں رحمان کی تخلیق میں کہیں کوئی کجی، کوئی کمی نظر نہیں آئے گی، تم کائنات میں غور کر کے دیکھو، تمہاری عقل ہی دنگ رہ جائے گی، یہ بنانے والا کون ہوگا جس نے یہ سب بنا لیا. ہم ایسے اوپر کو آسمان کو دیکھتے ہیں اور پھر کیا سوچتے ہیں، اچھا یہ آسمان اللہ نے بنایا، اچھا یہ نیلا ایسے بنا دیا، بس ٹھیک ہے. حالانکہ یہ وہ کہہ سکتے تھے جو آج سے ہزاروں سال پہلے کا انسان ہوگا، جو نہیں گیا، آج انسان چاند تک پہنچ گیا، اس نے اپنے قدم چاند پہ رکھ لیا، اس کو کہاں تک کی انفارمیشن مل گئی، پھر بھی اگر ہم عقل نہ استعمال کریں اور ہم سوچیں نا کہ اتنی تخلیق، اتنی زبردست طریقے سے پیدا کرنے والا کون ہے. اب سائنسدانوں نے کہا کہ سبحان اللہ، اس دن میں یہ بات پڑھ رہی تھی کہ اگر اس کائنات کے نظام میں، انہوں نے کہا 0.00000001% بھی کہیں کوئی چیز چینج کر دی جائے تو سب دھڑم بھڑم ہو جائے، درہم برہم ہو جائے، دھڑام سے گر جائے. یہ اتنی فائن لائن پہ چل رہا ہے، اتنا پریسائز حساب ہے. اب گریویٹی کتنی ہونی چاہیے، کتنی گریویٹی ہو کے انسان اس زمین پہ چل سکے، یہ میں نے اور آپ نے فیصلہ کیا ہے کیا؟ چاند کی طرح ہم کیوں نہیں اڑ اڑ کے اوپر اوپر جا رہے، جیسے چاند پہ انسان چلتا ہے تو اڑ اڑ کے جا رہا ہوتا ہے، گریویٹی کم ہے نا. یا ایسے ہی ہوتا کہ گریویٹی اتنی ہوتی ہم زمین سے ہی چپک جاتے، ایک ایک قدم اٹھا رہے ہیں تو اتنا بھاری ہے، اتنا مشکل سے ایک چلتے ہیں اٹھاتے ہیں، ایک دوسرا اٹھاتے ہیں، کتنا مشکل ہو جاتا چلنا. کس نے یہ اتنا پریسائز نظام، اتنا باریک بینی سے بنایا ہوا نظام، اتنا زبردست نظام. وہ جو نہیں مانتے نا وہ بھی کہتے ہیں، جو خدا کو ہی نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں کوئی زبردست ہی یہ کارنامہ ہے جو یہ ہوا ہوا اس کائنات میں. اب بندہ پوچھے کہ یہ زبردست کارنامہ کیا خود ہی ہو گیا؟ کیا سورج چاند میں اتنی عقل تھی؟ کیا کس کو مانے؟ سورج تو بہت ہی چھوٹا ہے، اسے تو اب وہ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے ستارے اور موجود ہیں، اس سے بھی بڑا پتا چل رہا تھا، اسے کس کو مانے ہم؟ اس کا مطلب کوئی ہستی ہے جو سب کو، اس سب نظام کو بنانے والی، چلانے والی ہے. اب ہم نے یاد رکھیں ایک بات کو، ہم نے اپنی انرجی اس پہ نہیں صرف لگانی کہ کوئی ہستی ہے، इस पे नहीं सिर्फ लगानी, इसलिए कि ये तो इंसान की फितरत भी पुकारती है कि कोई हस्ती है, जब भी जू ही वो देखेगा उसको समझ आती है, अनलेस कोई इतना पागल ही है जिसको जो इस रूल को ही जो ओवर रूल कर देता है इस बात को ही कि नहीं कोई भी चीज बगैर किसी चीज के सबब के बन जाती है, तो वो तो ऐसे पागल ही होते हैं लोग। लेकिन हर एक इंसान मानता है कि हर जो इफेक्ट है उसका कोई कॉज है, कोई पीछे उसके होता है जिसकी वजह से वो इफेक्ट हुआ। आप एक बच्चे के सर पे थप्पड़ मारे ना पीछे से, तो वो फौरन पीछे मुड़ के देखेगा, वो क्यों पीछे मुड़ के देखता है, इसलिए कि उसको पता है कि ये जो इफेक्ट हुआ है ना इसके पीछे एक कॉज है, कोई है जिसने ये किया है। समझ आई बात? ये क्या है? फितरत है, ये फितरत है कि हर चीज जो हो रही है ना इसके पीछे कोई करने वाला है। मैं छोटी छोटी एग्जाम्पल से आपको इसलिए समझाने, ये बहुत सिंपल है, ये सारी असल में अकीदे की बातें हैं जो मैं आपको, बहुत डेप्थ हो जाती है फिर, वरना मैं आपको समझाऊं कि किस तरह से, अल्लाह अकबर, फिर आगे भी क्लास खत्म करनी होती। तो कहने का मकसद ये है कि ये सब मानते हैं, असल मनवाने की बात क्या है कि वो ही इस लायक है कि उसकी इबादत की जाए, ये है जिसके ऊपर लोग नहीं आते। ये भी मान लेते हाँ कोई है, हाँ कोई भगवान है, हाँ कोई फला है, हर एक ने कोई ना कोई नाम दिए हैं, लेकिन वो उसकी सिर्फ इबादत करो और किसी की नहीं, इसकी तरफ लाना, यहां पे लोग मार खाते हैं। इसी वजह से आप आगे जब पैगंबरों की बातें पढ़ेंगे तो वो यही तो कहते हैं कि उस एक की सिर्फ इबादत करो, फिर क्यों इधर उधर जाते हैं, फिर जब कायनात उसने बनाई है और फिर वो ही है जो इसका मालिक है, इसका चलाने वाला, और जब से बनाई देखे चल रही है ना, चल रही है ना, आपकी मशीनें भी खराब हो जाती हैं, ये तो पता नहीं कब से चल रही है, जब से हम हिस्ट्री देख रहे हैं उस वक्त से ही चल रही है, आदम अलैहिस्सलाम की कहानी पढ़ते हैं उस वक्त से ही चल रही है, उससे पहले भी ये थी, तो कब से चल रही है हमें क्या पता, हमें तो भी हमारी अकल भी खत्म हो जाती है, हमें नहीं पता कि कब ओरिजिन हुआ और कब ये सारा बिग बैंग वो कहते हैं सब, वो कब हुआ हम नहीं जानते, हजारों हजारों साल उस वक्त से ये चल रही है, अब उस वक्त से आज तक ऐसे ही चलती जा रही है क्या बगैर चलाने वाले के? तो उसने 6 दिनों में ये बनाया, और ये पहले भी इसकी तफसीर बहुत दफा गुजर चुकी है इसलिए हम आगे चलते हैं। वकाना अर्शु अलमा, और था उसका अर्श पानी पर, उसका अर्श पानी पे था, ये भी मुतशाबिहात में से, जैसे सित्तत या मुतशाबिहात में से, और अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में फरमाया मुतशाबिहात के पीछे ना पढ़ो कि उनके उनकी डेफिनेशन करते रहो, हमें नहीं पता सित्तती अय्याम कैसे हैं, बस सित्तती अय्याम कौन से हैं, अब अल्लाह ताला का एक दिन हमारे तो 1,000 साल गुजरते हैं तो उसका एक दिन है, क्या वो एक दिन है या फिर हमारा एक दिन है, हमारा एक दिन तो वो है जो 24 आवर का है, जो जिसमें सूरज निकलता है और ग़ुरूब होता है और उसको हम एक दिन कहते हैं, क्या वो है, लेकिन जब कायनात ही नहीं बनी थी तो वो कैसे दिन हो गया, उस वक्त तो सूरज ही नहीं था, तो फिर कौन से दिनों का हिसाब था, तो हमारी अकल इसमें नहीं जा सकती कि वो 6 दिन क्या 6 अदवार थे, क्या 6 स्टेजेस थे, वॉट एवर, हम कहते हैं ये मुतशाबिहात में से है, अल्लाह ताला ने बता दिया 6 दिन में, वो 6 दिन जो भी थे, और उसका अर्श पानी पे था, पानी क्या पानी उस वक्त था, तो क्या उस वक्त पानी का वजूद था, ये कब था, ये हम नहीं जानते, तो ये भी मुतशाबिहात में से है। अर्श से मुराद बाजने का, अर्श का मतलब है अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की सल्तनत, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की हुकूमत, हालांकि ये तावील है और अल्लाह ताला की सिफात में तावील नहीं की जा सकती, ये दिलों के टेढ़ और कजी की अलामत है, जैसे मैंने आपको बताया कि सूरह आले इमरान में है, तो हम ये कहेंगे अल्लाह का अर्श, हम अर्श को मानते हैं और अल्लाह का अर्श है, लेकिन कैसे है, क्या उसकी कैफियत है, कैसे वो पानी पे था, हमें नहीं पता, जैसे अल्लाह की शान के लायक है उसी तरह, ठीक है, ये सब अल्लाह ने क्यों बनाया, क्या मकसद था इसका, अल्लाह ताला वो जात है बगैर मकसद के कोई भी कोई काम करता है ना, तो ये उसको वो काम फजूल होता है, कोई भी बड़ा आदमी किसी मकसद के बगैर कोई काम नहीं करता, बेमकसद ही बस चलता फिरे और बेमकसद ही काम करता फिरे, तो अल्लाह ताला की जात जो अलीम और हकीम है वो कैसे बगैर मकसद के कोई चीज बना देगा, तो इसका मतलब इसका भी कोई मकसद होगा, इस कायनात की भी कोई मकसद होगा, तो क्या मकसद है, वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताया लियबलुवकुम अय्युकुम आसनु अमला, ये सारी कायनात इंसान के लिए बनाई, ये हमें और जगहों से पता चलता है, सूरह बकरा में भी है। वो लजी खलकल कुम्मा फिल अर्दी जमिया, जैसे और जगहों पे भी है कि अल्लाह ताला ने ये सब तुम्हारे लिए बनाया, ठीक है। तो अब तो फिर सब तो तुम्हारे लिए बनाया हो तो समझ आ गई, तो तुम्हें किसके लिए बनाया फिर? अब हमें बताया जाता है कि ये सारी कायनात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई है, हालांकि कुरान में इसका कोई सबूत नहीं मिलता। कुरान में वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने तो इंसान और जिन्नों को इसलिए पैदा किया कि वो हमारी इबादत करें। वो तो यहाँ पे तो है ही नहीं कहीं कि कुछ और मकसद था इनको बनाने का। और यहाँ पे बताया तुम्हारे तुम्हें क्यों बनाया, तुम्हें यहाँ पे इस दुनिया को तुम्हारे लिए तखलीक किया, तुम्हें यहाँ पे भेजा, क्या मकसद है तुम्हारा कि यहाँ पे तुम क्या करो, ताकि यहाँ पे तुम्हारे तुम्हें टेस्ट किया जाए कि तुम्हें कौन आसन अमल करता है, ज्यादा अच्छे अमल बेस्ट काम कौन करता है, ताकि अल्लाह ताला उसको अपनी जन्नत में बसाए। जन्नत के लिए यहाँ पे सिलेक्शन हो रही है। आपको जैसे मसलन है इम्तिहान लिया जाता है ना, कि मसलन किसी ओहदे के लिए इम्तिहान लिए जाते हैं, या किसी जॉब के लिए कोई आपके इंटरव्यू होते हैं, कोई कोई आप कोई एग्जाम्स भी होते हैं बाज दफा, कि कोई टेस्ट लिए जाते हैं जॉब देने से पहले। तो इस तरह अल्लाह ताला ने वहां पे जो अपनी बड़ी प्यारी अल्लाह की मखलूक है जन्नत, वहां के रेजिडेंट्स के लिए, वहां की सिटीजनशिप के लिए आपको यहाँ पे एक एग्जाम देना होगा, और इस एग्जाम में प्रूव करना होगा कि आप उस जन्नत के काबिल हैं। जो प्रूव कर देगा यहाँ पे अच्छे अच्छे काम करके, वो अच्छी जगह पे ही जाएगा। और वहां पे अगर सारे मुजरिम और ऐसे लोग जो बुराई के काम करने वाले और ऐसे लोग सारे चले जाएंगे, तो अल्लाह ताला की उस जन्नत के काबिल तो नहीं है वो। तो ये मेरिट पे हमने आना है, अपने आप को प्रूव करना है कि हम आसन अमल करके दिखाएं। आसन अमल जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा होगा तो वो आसन होगा, आसन अमल वो है जो अच्छा होगा, बेस्ट होगा, ठीक है। हम सब बाज दफा गिनती पे जोर देते हैं कि इतनी दफा ये पढ़ लीजिए, चाहे उसमें क्वालिटी कुछ भी ना हो, अल्लाह ने क्वालिटी देखनी है कि अमल कितना प्यारा अमल है ये। वला इन कुलता इन्नकुम लमबऊसूना, और अलबत्ता अगर तुम कहते हो कि बेशक तुम उठाए जाने वाले हो, मिम बादिल मौत, मौत के बाद, अगर तुम इनको बताते हो कि तुम मौत के बाद उठाए जाने वाले हो, तो लयकूलन्नल्लज़ीना कफरू इन हाज़ा इल्ला सिहरुन मुबीन, तो वो जरूर कहेंगे वो लोग जिन्होंने कुफर किया, नहीं ये तो भाई खुला जादू है। देखें अल्लाह ताला ने सारा समझा के बताया कि जिस अल्लाह ने ये सारा बनाया, ये कायनात बना दी, और रिस्क देता है, और वो सीनों के हाल भी जानता है, वो सब ऐसे रब के बारे में आप बताएंगे कि वो मौत के बाद जिंदा करेगा, तो आगे से क्या जवाब देते हैं? नहीं ये तो जादू है। अब इसमें कोई बात रह जाती, कोई कसर रह जाती ये मानने में कि वो रब क्या मरने के बाद दोबारा नहीं उठा सकता? क्या उसके लिए मुश्किल होगा जिसने कायनात बना दी? लेकिन इंसान असल में ये मानना इसलिए नहीं चाहता कि वो अपनी बदामालियां नहीं छोड़ना चाहता, ये बात है, वरना ये अल्लाह ताला की इस कुदरत को मानना कोई मुश्किल बात नहीं है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है, वो चाहे दोबारा जिंदा कर दे। वला इन अखरनान हुमुल अज़ाब इला उम्मत मादूदा, और अलबत्ता अगर टाल दें हम इनसे अजाब को एक उम्मत तक, उम्मत ग्रोह को भी कहते हैं, मुद्दत को भी कहते हैं, उम्मत के बहुत सारे माने हैं, एक गिनी चुनी मुद्दत तक हम इनका अजाब अगर टाल देना, इनकी बुराइयां देख के, इनकी बदामालियां देख के, फिर भी इनके ऊपर अजाब ना लाएं, तो आगे से बजाय इसके कि इस बात के ऊपर शुक्र करें कि इतनी बदामालियों के बावजूद इनके ऊपर अजाब नहीं आ रहा, और इस्तग़फ़ार करें, लयकुलुन्ना मा यहबिसू, आगे से कहते हैं जरूर, अलबत्ता जरूर आगे से कहेंगे किस चीज ने रोक रखा है अजाब को, क्यों नहीं आता अजाब? तो अल्लाह ताला ने फरमाया अला सुन लो, योम यातीहिम लैसा मसरूफन अनहु, जिस दिन वो आ गया ना, फिर उस दिन फेरा जाने वाला नहीं है इनसे, वहां का भी हिम्मा क्या अनुभी यस्तासीनो, और फिर घेर लेगा इनको जो वो चीज जिसका ये मजाक उड़ाते थे, क्योंकि ये मजाक ही था ना, इन्होंने इसको मजाक बना लिया, क्यों नहीं आ रहा फिर अजाब? अगर अल्लाह ताला अपनी मसलहत की वजह से, अल्लाह ताला इनको टाइम देने की वजह से, इनके ऊपर रहम की वजह से अल्लाह ताला इनके ऊपर से अजाब डाले हुए है, तो बजाय इस चीज को एक्सेप्ट करने के और इस चीज के ऊपर शुक्रगुजारी के कि हमारे तो काम ऐसे हैं कि अजाब आ जाना चाहिए था, हमारे ऊपर अल्लाह की मेहरबानी हुई कि अजाब नहीं आया, वो कहते हैं क्यों रुका हुआ अजाब, ले आओ ना, क्यों नहीं आता? ये तो इंसान का हाल है, यानी इतना दीदा दलेर हो जाता है, तो फिर वो देखें फिर आगे जब अजाब आए तो फिर क्यों, कोई कौम बचे थोड़ी, कोई नहीं बची थी सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की, और वो भी आपको रीजन पता है, वला इन अज़क़नल इंसाना, और अलबत्ता अगर चखाए हम इंसान को मिन्ना अपनी तरफ से रहमत, रहमत ये आम इंसान की बात हो रही, यानी इंसानों का एक अमूमी रवैया जो कॉमन इनके अंदर एक चीज होती है उसको बताया जा रहा है कि जब हम इनको अपनी तरफ से रहमत का मजा चखाते हैं, सुम्मा नज़ानाहा मिन्हु, फिर हम छीन लेते हैं उसको, यानी उसके पास पहले नेमत थी, कोई अल्लाह की रहमत उसके ऊपर थी, उसके बाद अल्लाह ताला ने उसको उससे वापस ले लिया, छीन लिया, इन्नहु लयऊसुन कफूर, तो अलबत्ता वो सख्त मायूस हो जाता है, बड़ा नाशुकरा हो जाता है, पहले नेमत थी, कोई भी चीज थी अल्लाह ताला ने दी भी, वो अल्लाह ने वापस ले ली, अल्लाह की दी भी नेमत थी और वो वापस हो गई, तो इंसान ये नहीं सोचता कि अल्लाह की अमानत थी, उसने मुझे दी, वो मालिक है, जब चाहे वापस ले ले, वो उल्टा मायूस हो जाता है और नाशुकरा हो जाता है, और अलबला इन अज़कनाहु नअमाअ, और जब हम चखाएं उसको, अलबत्ता जब हम चखाते हैं उसको नेमत, बाद अदर्रा बाद तकलीफ के, मस्सतहु जो पहुंची उसको, लयकूलन्ना ज़हब सय्यातु अन्नी, तो वो कहता है मेरे से तो तकलीफें दूर हो गई, यानी एक सिनेरियो वो दिखाया है कि पहले अल्लाह ताला ने नेमत दी हुई है, उसके बाद अल्लाह ने वापस ले ली, तो इतना मायूस हो जाता है, ये नहीं सोचता कि जिस रब ने पहले दी वो फिर भी तो दे सकता है, इतनी नाशुकरी की बातें करने लगता है कि उसको ये भी नहीं कभी याद करता कि एक अल्लाह ने मुझे पहले भी तो दिया हुआ था, उसका तो मैं शुक्र अदा करूं, उसने मेरे ऊपर कितना करम किए रखा, इतने सालों मुझे ये नेमत दी रखी, तो मैं उसकी शुक्रगुजारी क्यों ना करूं उसके ऊपर जो पहले उसने मुझे दिया हुआ था, ऐसे थोड़ी कि मुझे कभी कुछ मिला ही नहीं था, उसने दिया तो हुआ था ना मुझे, और आगे भी मुझे उम्मीद है कि वो मुझे देगा, लेकिन इंसान इतना ना उम्मीद हो जाता है, जबकि देखिए अभी जो मैंने आपको आयत सूरह जुमर की बताई है, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, अल्लाह ताला तो कभी दे के आजमाता है कभी ले के आजमाता है, ये तो इम्तिहान की जगह ना, इसको जिसको मिल रहा है उसका कोई कमाल हो गया कि बहुत बड़ी चीज है, उसके कोई बड़े कारनामे हैं, उसकी बड़ी सलाहियत है इसलिए इसको मिल गया ना, जिससे छिना है उसका कोई ऐसा है कसूर है कि भाई इसके ही कोई बात, अल्लाह ताला दे के भी आजमा रहा है लेके भी आजमा रहा है, और हर एक की आजमाइश हो रही है, ये इम्तिहान गाह है, अभी बताया ना ये इम्तिहान गाह है, कोई इम्तिहान से बचा हुआ नहीं, अल्लाह देखना चाहता है अभी करता क्या है, तो इंसान की हाल देखो, इंसान ये करता है, ये इंतहाई ना उम्मीद इंतहाई ना शुक्रा, मायूस कि अब मुझे कभी नहीं कुछ मिलना, अब तो कुछ सही नहीं हो सकता, अब तो सब खत्म हो गया, अब तो बस कभी भी नहीं सही होना, और कफूर कि जो पहले मिला था उस पर वो भूल ही गया है कि कभी कुछ मिला था, उस पर भी नहीं शुक्र अदा करता, और जो इस वक्त और चीजें मिली हुई हैं उनको भी भूल जाता है, वो एक चीज के अंदर उसका मसला आया, कोई एक चीज है ना अल्लाह नेमतों में से कोई एक अपनी रहमत, कोई भी एक रहमत अपनी वापस ले लेता है, इंसान सोचता है मेरा राइट है मुझे मिलनी चाहिए, मेरी हर चीज ठीक ही होनी चाहिए, मेरे साथ परफेक्शन का मामला होना चाहिए, अब हालांकि खुद हम अपने अमल देखें तो फिर देखें, किसी का बड़ा प्यारा कॉल है उन्होंने लिखा कि इंसान अल्लाह ताला की दीवी कितनी नेमतें और रहमतों से फायदा उठाता है दिन भर में, लेकिन वो एंड ऑफ द डे अल्लाह ताला को क्या अमल भेजता है, वो ये भी तो सोचे। अमल हमारे कैसे जा रहे होते हैं अल्लाह के पास, वो भी तो चढ़ते हैं ना अल्लाह की तरफ, तो वो कैसे जा रहे होते, वो उसकी तरफ नहीं तवज्जो, बस लेने में कि मुझे बस बेस्ट मिलना चाहिए और ये मेरा हक ही है शायद। हालांकि इंसान का हक कुछ नहीं है, जो मिल रहा है वो अल्लाह की मेहरबानी है, वो जब चाहे वापस ले ले। लेकिन वो उस वक्त उस नेमत के इलावा जितनी नेमते हैं उन सब को भूल जाता है और इतनी नाशुक्री के कलिमात मुंह से निकालता है, हमें तो कुछ मिला ही नहीं, हमें तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं, मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है, मेरे साथ तो हमेशा ही ये रहा है, मेरे तो हालात कभी सही ही नहीं हुए, मैं तो। हालांकि वो कितनी नेमतों में बैठा हुआ ये सोचता ही नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें माफ करे ऐसे रवैयों से। ये एक मोमिन का रवैया नहीं होता, याद रखिएगा, एक मोमिन का रवैया ऐसा होता नहीं है। ये बताया जा रहा है एक नाशुक्रे का, एक काफिर का, एक अल्लाह ताला की नेमतों को भूल जाने वाले का, और हमें बताया जा रहा है कि हम ऐसे रवैयों से बच के रहें, क्योंकि ईमान वाले की ये तरीका ही नहीं होता कि ईमान वाला ऐसे नाशुक्री की बातें मुंह से निकाले। अब इसके अंदर आप देखें कि जो मोमिन होता है ना, उसके बारे में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला तो बड़ा ही अजीब है, यानी बड़ा शानदार है उसका मामला। तो उसका मामला कैसा है कि वो हर हाल में उसके लिए खैर ही होती है, और ये मोमिन के सिवा किसी को नहीं मिलता। कि ऐसे कि अगर उसको कोई भलाई पहुंचती है तो शुक्र अदा करता है, तब भी उसके लिए खैर ही है, जाहिर है शुक्र गुजारी ही आ गई। अगर मुसीबत पहुंचती है सब्र करता है और उसमें भी उसके लिए खैर ही है। लेकिन ये कौन करता है, सिर्फ ये सिर्फ मोमिन को नसीब होता है ऐसा करना, सबको नहीं होता। कि मोमिन का ईमान है ना कि मुझे तो कोई कांटा भी चुभ रहा है तो उससे भी मेरी अल्लाह के यहां दर्जे बुलंद हो रहे हैं, मेरे गुनाह मिट रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मैं अल्लाह के पास पहुंचू तो मेरे गुनाहों से मैं पाक हो गया हूं, मेरे गुनाह धुल गए। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को जो भी दर्द हो, थकावट भी इवन हो, थक जाते ना, काम कर कर थक गए, दावत की थक गए, पढ़ाई ज्यादा कर ली थक गए, किसी किचन में ज्यादा खड़े होकर थक गए, तो थकावट भी हो, बीमारी हो, कोई गम, कोई फिक्र लग गई है, बच्चों का फिक्र रहता है, कोई गम लग गया, कोई परेशानी हो, अल्लाह ताला उसकी वजह से उसके गुनाहों को मिटा देता है। बुखारी मुस्लिम में रिवायत है। तो जो मोमिन होगा वो कहेगा, और मुझे क्या चाहिए, और मुझे क्या चाहिए, मैं तो इसके ऊपर सबर कर रहा हूं, मेरे तो दर्जे बुलंद हो रहे हैं, मेरे तो गुनाह मिट रहे हैं। और आप सरसर ने फरमाया, बड़ी मुसीबत का बड़ा अजर होता है, और अल्लाह ताला जब किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उनको मुसीबत में मुब्तला करता है, जो उससे राजी हो जाता है अल्लाह उससे राजी हो जाता है, और जो उस अल्लाह से नाराज होता है ना अल्लाह उससे नाराज हो जाता है। तो ये भी मोमिन ही करता है ना कि मैं अल्लाह से राजी हूंगा, अल्लाह मुझसे राजी रहेगा, मेरे पर मुसीबत आई भी है बहुत बड़ी मुसीबत है, लेकिन अल्लाह तो अपने महबूब बंदों के ऊपर ही मुसीबत लाता है ना। अंबिया पे मुसीबतें आई, परेशानियां आई, कितनी तरह के पहाड़ टूटे उनके ऊपर। तो जिसको ये पता होगा ना कि ये तो अल्लाह से राजी, अल्लाह को राजी करने का मौका है, ये तो वो मौका है, मेरे तो मुफ्त में बैठे गुनाह मिटते जाएंगे, मैं तो चाहती हूं मुझे जन्नत में आला दर्जे मिले, मेरे तो दर्जे बढ़ रहे हैं, क्या मुझे बताएं कि वो नाशुकरी करेगा, वो मायूस होगा, नहीं होगा ना। तो ये तो सिर्फ जाहिर है मोमिन ही कर सकता, जो ईमान वाला, जिसका ईमान पक्का है। तो बाकी जो हमारे जैसे अल्लाह माफ करे लोग हैं, वो तो हाय फाय, अगर मुसीबत पड़ जाए तो हाय वाय, इतनी बेसब्री, इतनी मायूसी, इतनी नाशुक्री, अगर खुशी मिल जाए तो तब भी। अब वो खुशी का भी आगे सुन लें, खुशी में क्या करता है, यानी दोनों ही काम उल्टे हैं। खुशी में जब हम उसको नेमत का मजा चखाते हैं, बात तकलीफ के, यानी बड़ी ये मायूसी हो गई थी, ऐसे हो गया था, लेकिन चलो भाई नेमत आ गई, अब वापस मिल गई, तकलीफ दूर हो गई, मसलन बीमार था अब शिफा हो गई, बीमारी में तो बड़ा ही मायूस हो गया था, ये ना शुक्री बातें कर रहा था, लेकिन अब शुक्र है सेहत मिल गई। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, और भी बहुत सारी सिनेरियोज हो सकते हैं कि मतलब जब इंसान की जो मुसीबत थी वो दूर हो गई है, अब वापस सही दिन हो गए हैं, हालात सही हो गए हैं, तो फिर क्या कहता है, हाँ बस तकलीफ आई थी मुझ पे चली गई, इन्नहु लफरहुन फखूर, तो अलबत्ता खुश होने लगता है और बड़ा ही फखर करने लगता है, खुश होना बुरी बात नहीं है, मगर खुशी में ऐसे काम करता जो अल्लाह की नाफरमानी के होते। इतराता है मतलब इतराना, फखर करना कि भाई हाँ आई थी, ऐसे हमारे हालात आए थे, तो बस फिर ठीक हो गए, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, बस फिर ठीक हो गए। नहीं, इंसान को कोई चीज भी अल्लाह के करीब ना कर सके कि यानी जब मुसीबत आई थी तभी अल्लाह के करीब हो जाता, तभी अपने दर्जे बुलंद करा लेता, लेकिन वो मायूस हो गया और नाशुक्री करे। जब उसके ऊपर नेमत आई तो शुक्र गुजारी कर सकता, लेकिन वो नेमत मिलते ही क्या था, डांस पार्टी है, लोगों को बुलाया जा रहा है, उसमें नाफरमानियां अल्लाह की हो रही हैं और ढोल ढमक्के हो रहे हैं और क्या क्या हो रहा है, और अब लोग उसको अब कुछ लगते ही नहीं है, हकीर लगने शुरू हो गए हैं और गुनाहों पे मुजर हो गया है और बेहयाइयां शुरू हो गई हैं और क्या क्या चीजें नहीं होती, सबको पता है। जब खुशी के मौके होते हैं आपे से बाहर ही होना शुरू हो जाता, कोई अल्लाह को याद करता है, वो शराबें भी खुलती हैं तो कहां भी खुलती हैं, वो खुशी के मौकों में खुल रही होती हैं। तो क्या क्या इंसान हदें तोड़ने शुरू कर देते हैं। इसी तरह औरतों का नाचना और औरतों के बेहिजाब होना और ये सब खुशी के मौकों पे हो रहा होता है, तो इंसान उस वक्त भी ये नहीं सोचता कि मैं अब शुक्रगुजारी करके अब अल्लाह के आगे झुक जाऊं। किसी मौके पे भी इसको नहीं नसीब होता कि ये अपने दर्जे बढ़ा ले या अपने गुनाह बख्शवा ले। एक ये इंसान होता और एक वो मोमिन है, देखिए उसकी कितनी शान है। और फिर देखिए आप ये देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन जब मुसीबतों में मुब्तला लोगों को सवाब दिया जाएगा ना, और उनके आराम और उनके आसाइशें लोग देखेंगे, तो लोग कहेंगे जो दूसरे लोग होंगे जो दुनिया में आरामों में रहते थे, आसाइशों में रहते थे, वो तमन्ना करेंगे, कहेंगे काश दुनिया में हमारी खालों कैंचियों से काट दिया जाता। इतना वो देख के कहेंगे कि काश हमारे पर इतनी मुसीबतें आती, इतनी मुसीबतें आती कि हमारी खालें कैंचियों से काट दी जाती, हमें भी इतनी मुसीबतें पहुंचती, आज हमें भी ऐसे दर्जे मिल जाते। जबकि यहां पे अगर उसके ऊपर कोई जरा सी मुसीबत आ जाती थी तो मायूस हो जाता था, यहां पे नाशुक्रिया नाशुक्री ये कलिमात बोलने लगता था। और इंसान अस्तगफिरुल्ला अस्तगफिरुल्ला ऐसे ऐसे अल्लाह माफ करे ऐसी ऐसी बातें लोगों के मुंह से ला, ऐसे मौके पे भी इंसान की अकल सलामत रहे और अल्लाह ताला वो भी उस वक्त भी इंसान को अल्लाह ताला थाम ले और संभाल ले, वरना ऐसे लोग उस वक्त अल्लाह माफ करे अल्लाह ताला का ही बाज दफा इनकार कर देते, वो अल्लाह कहाँ है, फिर अल्लाह का क्या, वो फिर उस वक्त कहाँ है जिस वक्त हमारे पर ये मुसीबत आई है, जब हम ये कर रहे हैं तो अल्लाह ने हमारे साथ ऐसे क्यों कर दिया। आपको भी पता होगा किस किस तरह की बातें होती हैं, ये सारे कौन से कलिमात हैं, नाशुक्री के, यानी अल्लाह तुम्हारा तभी खुदा है कि जब तुम्हें देता रहे और नवाजता रहे और तुम्हें खुश करता रहे, और जिस वक्त अगर कोई मुश्किल आए जो तुम्हारे लिए ही फायदा मंद है। देखिए अब ये जितनी मैंने आपको अहदीस बताई है इसका किस किस का फायदा हो रहा है, उस इंसान का फायदा हो रहा है ना, क्योंकि ये इम्तिहान गाह है, उस इम्तिहान गाह में अल्लाह ताला कहीं उसकी करेक्शन कर रहा है, कहीं उसका ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन किस लिए करता है सर्जन, कि इसको शिफा हो जाए, इसकी बीमारी दूर हो जाए, कहीं हमारी जो बीमारियां दूर करने के लिए अल्लाह मुसीबत में डालता है, कहीं हमें संवारने के लिए अल्लाह ताला मुसीबत में डालता है, कहीं अल्लाह ताला अपने करीब करने के लिए मुसीबत में मुब्तिला करता है, कहीं दर्जात बढ़ाने के लिए करता है, कहीं गुनाहों को साफ करने के लिए, हमें धोने के लिए करता है। कि इंसान बीमार होता है और फिर वो उस बीमारी में उसके गुनाह झड़ते हैं झड़ते हैं झड़ते हैं, हत्ता कि वो पाक साफ हो जाता है और अल्लाह ताला उसको पाक साफ अपने पास बुलाता है। तो ये बात कौन सोच सकता है बताए, इस बातों को इसकी सेंस किसको हो सकती है, जिसका अल्लाह पर ईमान है उसको ये सेंस हो सकती है। फिर वो नहीं, जैसे वो एक बुजुर्ग के बारे में आता है ना कि वो पढ़ा रहे थे अपने शागिर्दों को, तो उनके जहाज चलते थे, बड़े बड़े बहरी जहाज सामान लेके जाते थे आते थे, तो किसी ने आके कहा कि वो आपका बहरी जहाज जो है ना वो डूब गया है, तो उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा फिर पढ़ाने शुरू कर दिया, ये नहीं कि हाय वाय हाय ये क्या हो गया, हाय ये हो गया, मुझे तो डिप्रेशन हो गया, मैं तो बस मर गए टूट गए। थोड़ी देर बाद एक और आदमी आया, उसने कहा नहीं नहीं वो इतला गलत थी, आपका जहाज बच गया। निकाल अल्हम्दुलिल्लाह और पढ़ाना शुरू कर दिया। यानी वो उनको पता है कि मुसीबत भी अगर आई है ना तो इसके अंदर भी मेरा भला है, इसके अंदर भी पता नहीं अल्लाह ने किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया, पता नहीं अल्लाह ने मेरे कितने दर्जे बुलंद करने के लिए मेरा इंतजाम कर दिया। कितनी उसको सोच आती है जो मोमिन होता है, पता नहीं ये नेमत मुझे मिली है अल्लाह ताला इससे मुझे आजमा रहा है, तो मैं इसमें बहुत ज्यादा शुक्रगुजारी करूं और ज्यादा मेहनत करूं अल्लाह की फरमाबरदारी में, अपने आप को और खपाऊं अल्लाह के कामों में, वो ये सोचता है। और दूसरी तरफ दूसरा ये रवैया। तो खुलासा क्या है कि मुसीबत में जो अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाए और राहत के दिनों में नाशुकरा हो जाए, तो वो ऐसे लोग हैं जिनसे अल्लाह खुश नहीं होता। ये कुफार का तरीका है, ये एक मोमिन का तरीका नहीं। मोमिन का मैंने आपको तरीका बता दिया कि वो कैसा होता है, वो वाली हदीस से पता चल गया ना आपको, मुस्लिम की जो हदीस है। ये मोमिन का मामला अजीब है कि उसके हर हाल में उसके लिए खैर है, नहीं वो या तो सबर की हालत में होता है या शुक्र की हालत में होता है, तीसरी कोई चीज नहीं है। या उसको कुछ मिल रहा है तो वो शुक्रगुजारी में, या उससे कुछ छिन रहा है तो वो सबर में, बस। और बाकी आप इनके देख लें, और अब हम भी देख लें कि जब हमें कोई मुश्किल आ जाए, कोई मसला, हमें एकदम में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई हमारे साथ कोई एकदम, कोई अल्लाह माफ करे, अल्लाह सबको महफूज रखे, कोई हादसा हो गया एकदम, तो फिर क्या होता है हमारा हाल, हम क्या बातें मुंह से निकालते हैं, हमारे रवैये क्या होते हैं, हमारे अंदर होप होता है कि मायूसी होती है, और फिर जब हमें कोई खुशियां मिलती हैं तो तब हमारे क्या हालात होते हैं, इतरा इतरा के लोगों के ऊपर फखर जिताना होता है या क्या होता है, या आजी होती है। इल्लल्लज़ीना सबरू व आमिलुस सालिहात उलाइका लहुम मग़फिरतुन व अजरुन कबीर। तो लोग ऐसे होते हैं, सिवाय उन लोगों के, वो लोग ऐसे काम नहीं करते, ना वो मायूस होते ना ना शुक्री करते हैं, ना वो इतराते हैं और ना फख्र करते हैं। वो लोग जो सबर करने वाले और आमिलुस सालिहात करने वाले, वो ऐसे रवैयों से बच जाते हैं, वो ये रवैये नहीं करते। सबर नेकी में भी, यानी नेमत मिलने पे भी एक सबर होता है, जिसमें कि आप अपने आप को कंट्रोल करें नेगेटिव रिएक्शन से। नेगेटिव रिएक्शन में क्या है, जो अल्लाह की नाफरमानी के काम है, वो भी सबर है। उस वक्त दिल करता है ना कि भाई उछल उछल के पता नहीं दुनिया को दिखा दें, क्या करें, पता नहीं कोई मुक्के लहराते हैं कि जैसे मेरा जोरे बाजू, अपने बाजू दिखाते बाकायदा कि देखो ये मैंने कामयाबी ली है, मैं, ये क्या है, यही तो है लफारे फखूर। कल तक आप हार रहे थे तो आप इतने मायूस थे, आज अगर आपको जीत मिल गई तो आप इतराना नहीं बंद कर रहे, आप लोगों को टीज करना नहीं बंद कर रहे, आप अपने मुक्के लहराने लगे हुए हैं, क्या आजी है ये। तो उसमें भी सब्र, कंट्रोल योर सेल्फ। और जो गम है उसमें तो सब्र है ही, और जब सब्र किस किस चीजों में होता है, तीन चीजों पे मैंने आपको सब्र बताया था ना, सबर अल तौआ, सबर अल मासिया, सबर अल मुसीबा। सबर ता इताअत में भी, अल्लाह की खुशनुदी के कामों को भी इंसान का दिल तो नहीं करता करने को, किसका दिल करता है, वो सर्दी में उठे, वुजू करे, नमाज के लिए खड़ा हो जाए, रात अंधेरी है, लोग सो रहे हैं, मैं क्यों खड़ी हुई हूं, रात को तो हम देर से सोए हैं, दावत से देर से आए, अब फजर पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, उठने का दिल नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कजा पढ़ लूंगी, नहीं। उस वक्त सबर अल तौआ है कि अल्लाह की इताअत के ऊपर सबर, अपने आप को जमा दे कि नहीं मुझे उठना है, नहीं भी दिल चाह रहा अल्लाह की इताअत का काम करने का, सिर्फ नमाज की बात नहीं कर रही, कोई भी अल्लाह की इताअत का काम। देखिए बहुत सारे काम है जिनका आज तक हमें पता चल गया लेकिन हम नहीं करते, क्यों, दिल नहीं चाहता। तो लेकिन अपने आप को अल्लाह की इताअत के ऊपर बांध देना, अब ये अल्लाह की खुशनुदी का काम है, आप इल्म ले रहे हैं, इसके ऊपर अपने आप को जमा के रखना, ये है सबर अल्लाह। आप अल्लाह ताला की रजा का काम कर रहे हैं, उन चीजों के ऊपर खुद को साबित कदमी से चलाते रहना, ये सबर है। आपका दिल करे या ना करे, आप मसरूफ हैं या नहीं मसरूफ हैं, इसी तरह सबर अल मासिया, गुनाहों के ऊपर सबर करना, यानी गुनाहों से रुक जाना। अब दिल कर रहा है कोई गुनाह का काम है, सारी दुनिया करने लगी हुई है, लेकिन आप अपने आप को रोकते हैं, ये भी सबर है। इसी तरह मुसीबतों पे सब्र तो सबको पता है। तो जो ऐसे सब्र वाले लोग होते हैं और नेक अमल करते हैं ना, तो उनके लिए अल्लाह ताला ने मगफिरत और बड़ा अजर रखा है। हम बाज दफा सब्र कर नहीं पाते, एक चीज को शुरू करते हैं और उसके बाद 4 दिन बाद बस हमारा शौक खत्म हो जाता है, फिर हम वापस उसी रूटीन पे चले जाते हैं। ये दुरुस्त नहीं है। सब्र यही होता है कि जमाएं अपने आप को, नेकी के काम एक दफा शुरू कर लेना, फिर उसको कंटिन्यू रखें। फलाल्ला का तौरिकुम बाद मा यूहा इलैक, तो शायद कि आप छोड़ने वाले हो बाज हिस्सा वही का जो आपकी तरफ की गई है। अच्छा, अब ये आयत आपको ऐसे लगेगा कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ने वाले थे उस बास हिस्से को जो आपके ऊपर वही किया गया, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस आपके ऊपर तो एतमाल ही नहीं हो सकता इस चीज का कि आप कोई चीज छोड़ दें इसमें से और कुछ ना बताएं या इन इस काम को छोड़ दें। तो असल में ये इस्तेफहाम इनकारी है, यानी जैसे आप कहते हैं ना, तुम क्या समझती हो कि मैं ये काम करूंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे पूछ रही हूं कि तुम ये समझती हो, बल्कि इसका मतलब यही है कि जाहिर है मैं नहीं करूंगी। तो आप क्या ऐसा छोड़ने वाले, यानी काफरों को बताया जा रहा है कि तुम जितना मर्जी मुखालफत कर लो, जो उनके रिएक्शंस थे ना, नेगेटिव रिएक्शंस, उनके बाद तो वाकई कोई और होता तो छोड़ के भाग जाता इस काम को कि मैं नहीं कर सकता। इतनी उनकी तरफ से शदीद मुखालफत थी, इस कदर वो सता रहे थे, इस कदर जिसको कहते ना इंसान का जीना हराम कर देना। इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर हिजरत का हुक्म आ गया कि उन्होंने जिंदगी मुश्किल कर दी थी वहां पे। हम तो छोटी सी बात हमें कोई कह दे तो हम दिल पे लेके बैठ जाते और दिनों तक नहीं छोड़ते, सोचते रहते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बातें सुनाई गई, आपके प्यारों को सताया गया, आपको तकलीफें दी गई, फिर आपका कोई पुरसाने हाल नहीं, वहां पे पूछने वाला नहीं। अबू तालिब के बाद तो कोई भी नहीं था इंसानों में, देखें अबू लहब बन गया हुआ था सरदार और उसने तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी। ऐसे हालात में एक मुसलसल स्ट्रेस, मुसलसल एक परेशानी का आलम, तो ऐसे हालात के अंदर कोई और इंसान होता तो वो इस काम को छोड़ के भाग जाता, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है शायद कि आप छोड़ने वाले हो बास हिस्सा वही का जो आपकी तरफ की जाती है, यानी आप तो कभी छोड़ नहीं सकते इसको। वह दाए कुंभी ही सदरू का, और तंग होने वाला है साथ इसके आपका सीना, जाहिर है आपका तकलीफ होती तो थी, इंसान ही थे ना। और उस वक्त भी आपने इस काम को जारी रखा, उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम में कमी नहीं की। जब ही तो अल्लाह ताला ने जब फरमाया ना अलयौम अकमलतु लकुम दीनकुम, अल्लाह ताला ने आज तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, जो आखिर में ये फरमाया, इसीलिए तो फरमाया क्योंकि दीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचा दिया था सारा, अगर ना पहुंचाया तो फिर मुकम्मल कैसे होता। तो ये जब आयात उतरी हैं तो दीन यानी मुकम्मल हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब चीजें पहुंचा दी, हालांकि इतने सख्त हालात थे। अल्लाह अकबर, तो आपका सीना घुटता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी रवैये और इनकी जो कुफराना बातें थी उनको सुन के आपके तकलीफ होती थी, और क्रिटिसाइज तो करते ही थे, मजाक तो उड़ाते ही थे। अय्यकुलू लौला उन्ज़िला अलैहि कंज़ुन औ जाअ मअहु मलक, ये वो कहते हैं आपका सीना घुटता है इन बातों से कि वो मसलन मजाक ही एक तरह को उड़ाना हुआ ना, आपके पास कोई खजाना क्यों नहीं है, क्यों आपके घर में फकरो फाका है, आपको तो खुद ही नहीं खाने को मिलता, तो आप क्या वो मतलब इतने ही अल्लाह के नबी हैं तो फिर आपके पास तो खजाने होने चाहिए, तो क्यों नहीं है आपके पास कोई खजाना, या आपके पास कोई फरिश्ता क्यों नहीं है, कोई फरिश्ता ही आपका बॉडी गार्ड बन के आ जाता, कोई आपको सता ही ना सकता, आप आराम से अपना पैगाम देते रहते। तो इस तरह की टीजिंग बातें करते थे। अल्लाह अकबर, तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमा अंता नजीर, आप ये चीजें आपको दिखाने के लिए नहीं भेजा गया कि आप इनको दिखाएं कि देखो मेरे साथ कितनी रेल पेल खजानों की और मैं कितना अमीर हूं और देखो मेरे साथ बॉडीगार्ड, आप तो वार्निंग देने के लिए आए हैं। अल्लाहु अला कुल्ली शैइन वकीर। अल्लाह ताला हर चीज पर कारसाज है, काम बनाने वाला है, सब काम उसके हाथ में, वो वकील है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरे सहाबियों तुम्हारे बाद एक सब्र का दौर आने वाला है, यानी ये आपके ऊपर गुजरी तकलीफें, और आपने फरमाया एक सब्र का दौर आने वाला है, इसके बाद भी एक दौर आना है सब्र का, यानी हम सब के लिए ये बात है कि उस दौर में सब्र करना इतना मुश्किल हो जाएगा जैसे हाथ में अंगारा लेना, इतना मुश्किल होगा दीन पे चलना, दीन के पर चलने में इतनी इंसान को तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी जैसे अंगारा हाथ में लेना। जाहिर है डटना मुश्किल है ना, अमल करते रहना, चाहे आपकी मुखालफत हो रही हो, चाहे लोग आपको बातें बना रहे हो, चाहे लोग आपको मुलानी कह रहे हो, चाहे लोग आपको कुछ भी कह रहे हो, आप फिर भी नेकी पे चलते रहें, चाहे लोग आपको कह रहे हो ये तो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट है, ये तो ऐसे है, जो भी कहते रहें, और आप कहें कि नहीं जी मैंने तो वही करते रहना, ये तो बहुत ही सब्र वाले लोगों का काम ही हो सकता है, हर कोई तो नहीं करेगा, हर कोई ये कहेगा चलो जैसे लोग चल रहे हैं मैं भी वैसे ही चलता हूं, आजकल तो यही है, फलां भी ऐसे करता है, फलां भी ऐसे करता है। तो वो ऐसा वक्त आने वाला है जिसमें अमल का करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इस बात को जहन में रखिए, इसलिए कि हम सोचते हैं कि पता नहीं अमल हम करें तो लोग हमें हार पहनाएं, और अगर नहीं पहनाते तो फिर हम छोड़ जाएं, लोग हमारी तारीफें करें, लोग हमारे फैन हो जाएं, तो ऐसा हमेशा नहीं है, लोग नाराज भी होंगे आपसे, लोग आपको बातें भी बनाएंगे, लोग आपको मजाक भी करेंगे, लोग मे भी आपको कोई ऐसे भी लोग हों जो आपके साथ बात करना बंद कर दें, छोड़ दें आपको, फिर क्या करेंगे, छोड़ देंगे आप भी। तो आप सर हमने तो बता दिया था कि एक सब्र का दौर आने वाला है, मुश्किल होगा या आसान नहीं है रास्ता। हम यकूलून तरा, क्या ये कहते हैं कि इसने खुद ही गाड़ लिया, कुल्फा तू भी आश्री सुअर इन मिथली ही मुफ्तरियात, तुम भी फिर घड़ के ले हो, ये कहते हैं ना तुमने घड़ लिया, कुरान खुद ही घड़ लिया, वो मुशरिकी ने मक्का ये कहते थे ये अल्लाह का कलाम नहीं, ये तो आप खुद ही बना के ले, तो फिर अगर आप उनसे कह दो अगर मैं बना के लाया तो तुम भी बना के ले आओ, इसमें तो 114 सूरतें हैं ना, तुम 10 सूरतें ही ले आओ इस जैसी, तुम भी गाड़ लाओ, वदउ मन इस्तता तुम मिन दून अल्लाह इन कुंतुम सादिकीन, और मदद भी ले लो, बुला लो जिसको तुम बुलाना चाहते हो, अल्लाह के सिवा जिससे भी तुम हेल्प लेना चाहते हो हेल्प लो, अगर तुम सच्चे हो ना कि मैंने बना लिया है, तुम भी बना लो, मैं तो उम्मी हूं, तुम तो बड़े जुबानदान और बड़े शायर और बड़े अपने आप को समझते थे कि हम बहुत बड़ी चीज हैं। फइल्लम यस्तजीबू लकुम, फिर अगर वो जवाब ना दे सके तुमको, अब इसका क्या जवाब देते हो, जाहिर है वो तो उनके सामने जब हजरत अली ने जाके सूरह कौसर, इतनी मुख्तसिर सूरह, 3 आयतें हैं सिर्फ, जाके काबा में लटका दी थी, और बड़े बड़े शायरों के उस वक्त कलाम वहां पे, जो उनके सबसे जबरदस्त कलाम होता था वो काबा में लटकाया जाता था, और लोग आके देखते थे, तो लोग जब गुजरते थे और देखते थे तो कहते थे कि ये इंसान का कलाम नहीं है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सका, आज तक देखें नहीं कोई मुकाबला कर सका कि ऐसा, वरना वो अगर उनके ऐसे चैलेंजेस उनके सामने रखे हुए थे तो उनको तो चाहिए था कि फौरन इसका जवाब देते थे, ये चैलेंज है कुरान का, यहाँ पे 10 सूरतों की बात है, एक सूरत की भी बात है, और सूरह तूर में तो कहा गया कि कोई एक बात ही ले आओ ऐसी, सूरत भी छोड़ो एक बात ही ले आओ कोई ऐसी, वो भी नहीं ला सके, चलो इतनी छोटी सी सूरत बना लो सूरह कौसर जितनी, तो आपका मतलब है उन्होंने ना कोशिश की होगी, उनको नहीं वो होता होगा कि हम इसका जवाब दें, लेकिन बेबस थे ना, तो अगर तुमने जवाब नहीं दे सकते इसका, तुमने नहीं तुम इसका मुकाबला कर सकते, तो फिर जान लो अन्नमा उन्जिला बे इल्मिल्लाह, तो ये नाजिल किया गया है अल्लाह के इल्म के साथ, ये अल्लाह का इल्म है, ये इंसानी इल्म नहीं है, ये हम इसको ऐसे देखते हैं कि जैसे हम इसको मुकाबला करते हैं अपनी साइंस से या अपने और दुनियावी उलूम से, कि एक तरफ कुरान है और एक तरफ ये साइंसी उलूम है, कुरान मुकाबले में आप मुकाबला कर ही नहीं सकते, ये मुकाबला किसी तरह बनता ही नहीं है, आप मैं कहती हूँ एक जर्रे और सूरज का भी मुकाबला कोई हो सकता होगा, कुरान का तो मुकाबला दूसरे उलूम के साथ इसलिए नहीं है कि ये अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह ताला कौन है, लैसा का मिथली ही शैउन, उस जैसा कोई है ही नहीं, जिस जैसा कोई है नहीं उसके कलाम जैसा भी कोई और कलाम नहीं हो सकता। तो इंसान कहां से मुकाबला कर सकता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया था कि जब उनसे पूछा गया कि कौन सबसे ज्यादा इल्म वाला, फरमाया मैं हूं सबसे ज्यादा इल्म वाला, अल्लाह ताला ने दिखा दिया खिजर को देखो। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को रियलाइज हुआ मेरा इल्म कुछ और है, इनका इल्म कुछ और है, और इतने टॉप के इल्म वाले जो थे उनका भी इल्म कुछ नहीं था। जब खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो परिंदे की चोंच में पानी है, एक कतरा पानी का, ये है जो मेरा तेरा और सारी मखलूक का इल्म है, और समंदर है जो अल्लाह का इल्म है, कहाँ मुकाबला हो सकता है बताएं। तो फिर तुम मान क्यों नहीं लेते कि ये अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, वह अल्लाह इलाह इल्ला हु, और नहीं कोई इलाह मगर वही। जब तुम इस कलाम को सुनते हो और फिर तुम बेबस हो जाते हो कि कैसे हम इसका मुकाबला करें, तो फिर मान क्यों नहीं लेते कि ये उस एक उस हस्ती का कलाम है, और जिसके इल्म के आगे किसी का इल्म नहीं ठहर सकता। तो फिर मान लो ना कि इलाह वही है, इबादत के लायक वही है। अल्लाह अकबर, देखा है अल्लाह ताला ने किस तरह से कितना लॉजिकल दलाइल के साथ तौहीद को मनवाया है। देख रहे हैं आप, अब हम कहीं से किसी को मनवाने लगे तो हमें समझ ही ना आए कि हम किस तरह से दलाइल दें। ये दलाइल हैं सारे, ठीक है, ये दलीलें हैं जिनसे अल्लाह ताला ने मनवाया इंसान को कि तू मान ही जा, फिर उसके बाद अब तेरे पास क्या रहेगा, तू लाजवाब जब हो गया, जवाब ही नहीं जब खुद दे सकते, मान लेना फिर कि ला इलाहा इल्लल्लाह फहल अंतुम मुस्लिमून। तो फिर क्या तुम सरे तस्लीम खम करते हो, सबमिट करते हो, क्योंकि इसके बाद तो होना यही चाहिए कि इंसान फिर झुक जाए, फिर तो कोई चारा नहीं है। लेकिन इस हक को देख के फिर भी कोई लोग इससे फिरते हैं, तो जानते हैं क्यों, पता है आपको क्यों? मन काना युरीदुल हयात दुनिया वजीनतहा नुवफी इलैहिम आमालहुम फीहा वहुम फीहा ला युबखसून। जो दुनिया की जिंदगी चाहता है ना, और इसकी जीनत, यहीं के फायदे, एक्चुअली जितने लोग भी हक को देख के फिर इनकार करते हैं, तो उसकी वजह ये नहीं होती कि इनको हक समझ नहीं आया। चाहे जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस दीन को देखा जाना, जितने भी कुफार हैं, कुरान को पढ़ा जी वो नहीं माने या कुछ है, वो ये बात नहीं होती कि हक नहीं मिला उनको, इसमें हक नजर नहीं आया, बल्कि बात ये होती है कि वो दुनिया का कोई फायदा चाहते हैं। क्योंकि जो हक का मुतलाशी होता है ना, उसको यहां से हक मिल जाएगा, फिर वो ये नहीं कह सकता मुझे तो कुरान समझ ही नहीं आता, मुझे तो इसकी कोई लॉजिक ही नहीं लगी, मुझे तो नहीं ऐसे लगा। इसका मतलब ये है कि उसका मकसद कुछ और है, वो दुनिया की कोई चीजें फायदे वगैरह चाहता है। और वह ये भी जो मुर्तद हो जाते हैं लोग, ये जो लोग मसलन मुसलमान होते हैं और फिर मुर्तद हो जाते हैं, वो भी यकीन करें सिर्फ दुनिया के फायदों के लिए। कहीं से उनको फायदा मिल रहा होता है, उनको पता होता है हम ऐसे मुल्क में हैं जहाँ पे हमें कोई ये यहाँ पे कोई देगा फायदे, तो फिर वो उनके उसमें, या कोई चर्च वाले उनको कुछ दे रहे होते हैं, ये नहीं कि उनको बड़ा हक वहां पे नजर आ गया तो वो उसकी तलाश में गए, इस कुछ भी नहीं है इसमें। यकीन करें कि ये जो भी उधर को पलटते हैं ना, दुनियावी फायदे सिर्फ उनका मतमईन नजर होता है। ये अब्दुल वाहिद मलिक जिनकी किताबें भी हैं ना, उन्होंने अपनी किताब में एक वाक्या लिखा हुआ कि इंडोनेशिया के किसी एक गांव के अंदर जाके ये क्रिश्चियन मिशनरीज ने बड़ा काम किया, और वहां पे उनको क्रिश्चियन किया, तो बहुत सारे लोग क्रिश्चियन हो गए, तो उनके बड़ा पादरी जब आया, उसने आके तकरीर की वहां पे, बड़ा वेलकम किया और बड़ा उनको मतलब सराहा इस बात के ऊपर। और उसके बाद क्योंकि बड़ा पैसा खर्च किया था उन्होंने, इनको बड़ा कुछ दिया था, तो फिर गरीब लोग थे, ना समझ लोग थे, वो अपनी मजबूरियां थी, वो क्रिश्चियन हो गए। अच्छा, जब उसने खड़े होकर तकरीर की, तो उसने में एंड में उनसे पूछा कि इतना कुछ हमने आपको दिया है, तो कुछ और आपको चाहिए, कुछ और आपको चाहिए तो बताएं, बड़े फखर से उसने कहा ना। अच्छा, इनोसेंट लोग, देखे ना आप, इस तरह के लोग होते हैं, वो वाकई मतलब वाकई क्रिश्चियन नहीं हुआ तो उनको पता ही नहीं होता। कहते हैं आगे से वो लोग कहते हैं बस एक चीज है, हम आपने इतना पैसा दिया है, अब हम चाहते हैं कि आप हमें थोड़े पैसे दे देंगे, हम हज पे चले जाएं। सुभान अल्लाह। तो ये जो ये इनको जाके आप ये ना समझें कि ये इनको कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो कोई पता नहीं इनको क्या हक वहां पे नजर आ रहा है, दुनिया के फायदे हैं। तो जो दुनिया के फायदे के लिए कुछ करता है और इसकी जीनत के लिए, यहाँ की ब्यूटी के लिए, माली फायदे हैं, कोई और तरह की कोई नौकरी दे देगा, कोई अस्पताल बना देगा, कोई हमारे बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो जाएगी, तो यहीं पे हम उसको दे देंगे, आखिरत में फिर उसके लिए कुछ नहीं है। और ये हम अच्छी तरह वो उस हदीस से जानते हैं जो अबू हुरैरा से जब पूछा गया कि आपकी कोई हदीस बताएं, तो उन्होंने जो हदीस बताई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद की बात है, कि जो तीन लोगों से सबसे पहले जहन्नुम को भड़काया जाएगा तो उनमें वो आलिम है जिसने दुनिया के फायदों की खातिर जितना भी काम किया था, फिर इसी तरह वो सखी है जिसने दुनिया की खातिर पैसा लुटाया था, फिर वो शहीद है जिसने दुनिया में वाहवाह की खातिर लड़ा था। तो ये पता चलता है कि जो दुनिया की जिंदगी और इसकी तारीफें, जीनत इसकी तारीफें भी हैं, इसकी तारीफें, इसकी वाहवाह, इसकी में शोहरत, इसमें ये जीनत है ना, इसमें माल का मिल जाना, इसमें कोई भी दुनियावी चीजें मिल जाना, जो यहाँ की चकाचौंध है। हाँ, अब हम आपको घर दे देंगे, गाड़ी दे देंगे, हम आपको ये कर देंगे, हम आपको वीजा दे देंगे, हम आपको ग्रीन कार्ड दिला देंगे, उसके पीछे कई लोगों को वो किया हुआ। तो जो ये चाहता है ठीक है, उसके यहीं पे उसको अमल का बदला मिल जाएगा, आखरत में कुछ नहीं। उलाइक अल्लज़ीना लैस लहुम फिल आखरति इल्लन नार। फिर आखरत में उनके लिए क्या है, जाहिर उन्होंने यहीं के लिए किया तो यहीं के लिए मिलेगा, चाहे वो कोई मुसलमान है चाहे वो कोई काफिर है। जिसने दुनिया के लिए किया होगा अगर नियत में दुनिया है तो दुनिया में ही अल्लाह दे देगा। अब देखें काफरों को चूंकि आखरत में कुछ भी नहीं मिलना, और वो करते भी यहाँ के लिए, उनका तो आखरत पे ईमान ही नहीं है, तो वो अल्लाह ताला उनको उनकी नेकी के यही बदले दे देता है। कोई उन्होंने काम किए, कोई उनके आबा ने काम किए, कोई अस्पताल बनाए, कोई कुछ, तो यहीं पे उनको मिल जाता है। कईयों के नाम चलते रहते हैं बाद में, आज भी कई अस्पतालों के नाम ऐसे ऐसे काफरों के नामों के ऊपर चल रहे हैं हमारे मुल्कों में। तो ये उन्होंने जो नेकी की थी उसका उनको अल्लाह ने दुनिया में ही दे दिया, और उसमें कोई कमी नहीं की। लेकिन आखरत में फिर कुछ नहीं है, फिर अल्लाह ताला यहीं पे उनका सारा हिसाब चुका देता है। तो इसलिए अपने आमाल को हम जरूर जांचा करें कि हम क्यों कर रहे हैं। कोई अगर हम दीन का लेबल लगा के भी कोई काम कर रहे हैं ना, तो वो भी क्यों कर रही हूँ। अगर मैं ये कुरान भी पढ़ रही तो क्यों कर रही हूँ, मैं ये सीख क्यों रही हूँ, क्या मुझे चाहिए इससे। मैं अगर हिफ्ज कर रही हूँ, मैं अगर अपनी तिलावत को खूबसूरत करके बना रही हूँ, मैं तजवीद सीख रही हूँ, मेरा इसमें चाहिए, चाहती क्या हूं मैं इससे कि जब मैं लोगों के सामने तिलावत किया करूं तो लोग कहें बड़ी खूबसूरत तिलावत है, बड़ी प्यारी आवाज है। ऐसे यहाँ मैं क्या चाहती हूँ, फिर ये इल्म ले रही हूँ ताकि मैं कोई दर्स दिया करूं, मैं भी इस तरह लोगों को ऐसे बताया करूं, फिर लोग कहें कितना जबरदस्त बोलती है, अल्लाह हू अकबर। तो इसलिए हमारे बहुत सारे काम हम दीन के नाम पे भी करते हैं तो उनमें भी इखलास नहीं होता, और इसी तरह और किसी की खिदमत खल्क के काम है, इंसानियत के नाम पे कई काम है, कई एनजीओ काम कर रही होती हैं, किस लिए हमें फंडिंग मिलेगी, उससे घर चलेंगे, उससे जॉब भी होगी। तो देखें अल्लाह ताला कहता है मैं यहीं पे दे दूंगा, लेकिन आखरत में फिर कुछ नहीं है। वह हाबी तमा सना उफिया, और जाया हो गया जो उन्होंने किया इसमें, सब जाया हो गया, यहीं पे जाया हो गया। और बातिल उम्मा के अनु या अमलून, और बातिल हो गया जो वो अमल करते थे, चाहे वो दुनियावी किस्म का काम हो। देखें दुनिया के भी कोई काम हो सकते हैं जो आपको सवाब का सवाब के बायस बन सकते हैं, और दीन के कोई काम हो सकते हैं जो अजाब का बायस बन सकते हैं। वो कैसे, दुनिया के कामों में अगर आपकी नीयत अल्लाह ताला की रजा है और उसको सिर्फ अजर लेना है तो वो भी आपके लिए नेकी बन सकती है। कोई डॉक्टर ही बन रहा है तो उसकी ये है कि मैं खिदमत खल करूं, अल्लाह की मखलूक को मैं तकलीफ से निजात दूं, वो उसके लिए नेकी बन गई। उसका सारा पढ़ना नेकी, उसका काम करना नेकी, उसको कमाई जो भी मिल रही है वो अलग बात है, लेकिन ये नेकी बन गया उसका सारा, कि अल्लाह की मखलूक है ये तकलीफ में है, मेरी वजह से किसी की तकलीफ दूर हो जाए, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। देखें उसके लिए कितनी बड़ी नेकी है। ऑन द अदर हैंड, अब ये है तो दुनियावी काम, देखने में देखा जाए तो हम कहेंगे भाई ये नौकरी कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ दीन का काम है कोई कर रहा है, बजाहिर वो कुरान पढ़ रहा है, हदीसें सुना रहा है, ये कर रहा है, लेकिन उसका मतमईन नजर क्या है कि लोगों में शोहरत मिल जाए, पैसा मिल जाए, तारीफें मिल जाए, तो वो ही उसके लिए आजाब है। अफमन काना अला बय्यिनत मिन रब्बी। अब ये दो कैरेक्टर दिखाए गए यहाँ पे, कि एक वो है जो अल्लाह ताला की तरफ से एक वाजे दलील पे है, वह यतलू शाहिद मिनहु मिन कबली, और पीछे आता है उसके एक गवाह उससे, मिन कबली तो आगे के साथ है, शाहिद मिनहु और एक गवाह उससे, यानी एक वो शख्स है, एक वो आदमी है जिस जो एक वाजे दलील पे, यानी नूरे फितरत लेकर आया है, और इंसान की फितरत में अल्लाह की पहचान, अपने रब की तरफ से वो एक वाजे दलील पे, यानी उसके अंदर है तौहीद की जो अल्लाह ताला ने इन बिल्ट उसके अंदर एक डाल दी है गवाही, एक तौहीद की पहचान अल्लाह ताला ने उसके अंदर डाली है। उसके बाद वो जब दुनिया में आता है तो उस दुनिया में आके फिर एक शाहिद भी इस चीज के ऊपर आ जाता है, अल्लाह ताला एक नबी भेज देता है या कुरान है जो भी गवाही देता है इस बात पे, जो उसके अंदर इनबिल्ट था ना उसके ऊपर एक गवाह भी आ गया। वह मैंने कबली ही किताब मूसा इमाम और रहमत, और इससे पहले मूसा अलैहि सलाम की किताब भी इमाम और रहमत थी, हिदायत का जरिया थी। तो अब इस पहले तो वो थी, अब कुरान आ गया या अब नबी आ गया जो शाहिद है, और बय्यिनत मिन रब्बी ही क्या है जो उसके अंदर है, अंदर भी गवाही है और बाहर भी एक गवाह आ गया अल्लाह ताला की तौहीद को बताने के लिए। इससे पहले मूसा अलैहि सलाम की किताब में भी यही था, उलाए का युमिनुना भी, ये लोग ईमान रखते हैं उस पे, यही लोग हैं जो उस पे फिर ईमान ले आते हैं, जिनके पास अंदर भी है और उनने बाहर की भी ये गवाही देख ली, वो ईमान ले आए, सपोर्ट मिल गई ना, अब कुरान आया तो सपोर्ट मिल गई, हाँ देखो अल्लाह की तरफ से भी यही बात है और मेरा दिल भी इसकी गवाही देता है। वह मैं यकफुर भी मिनल आजाबी फन्नारु मौईदुहु, और जो कोई कुफर करे इसके साथ ग्रोहों में से, तमाम ग्रोहों में से, चाहे वो कोई यहूदी है, चाहे ईसाई है, चाहे वो उदहरी है, चाहे कोई भी है, तो उनके लिए आग है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस उम्मत में से मतलब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद तमाम जितने भी लोग हैं वो आपकी उम्मत है, चाहे वो काफिर है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो दहरी है, सब आपकी उम्मत है। ये वो उम्मत वो है जो जिनको उम्मत दावत कहते हैं, और जिन्होंने मान लिया वो उम्मत इजाबत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस उम्मत में से जिसने मेरे बारे में सुन लिया, फिर उस वो कुफर पे मर गया उसी हालत में, वो चाहे यहूदी हो या ईसाई हो, तो जहन्नमी है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, अंदर भी गवाही मौजूद है, कुरान ले आए, कुरान आ गया, आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, आपके लाया हुआ जो कलाम है अल्लाह ताला की तरफ से जो पैगाम है वो तो महफूज है, आपकी बात किसी ने सुन ली है, फिर भी कोई ईमान नहीं लाता, तो आग उसका ठिकाना है। फला तकुफी मिरियतिम मिन, पस तो ना तुम किसी शक में पड़ना इससे, इन्नहुल हक मिन रब्बिका, ये वाकई सच्ची बात है तुम्हारे रब की तरफ से। हक का समझ आती है आप लोगों को कि हक क्या होता है? हक मैं कहती रहूं आपको समझ ही ना आए, तो हक जो सच्चाई है, तो अल्लाह ताला की तरफ से ये बात सच है, तो तुम इसमें शक ना करना। वलाकिन अक्सर अन्नास ला युमिनून, अक्सर लोग लेकिन मानती नहीं है। देखिए इंसान को अल्लाह ताला ने उसके अंदर भी ये चीज रख दी कि एक रब है, एक ही इलाह है, उसकी पहचान, और उसको बाहर भी शाहिद भेज दिया। पहले भी लोगों के पास किताबें आती रही हैं, उनमें भी यही था। फिर कुछ लोग ईमान लाते हैं, कुछ बहुत सारे ग्रोह हैं जो नहीं मानते, लेकिन तुम इसमें शक में ना पड़ना, ये हक है, चाहे अक्सर लोग ना भी माने, ये एक ग्रोह है, ये एक मानने वाले हैं, दूसरी तरफ कौन सा गुरु है, वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाह कदीबा, उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह के ऊपर झूठ गढ़े। अल्लाह पे झूठ गढ़ना क्या है, अल्लाह पे झूठ गढ़ना ये सब चीजें झूठ गढ़ना ही है कि अल्लाह के साथ कोई और शरीक है, कोई उसका बेटा है, अस्तग़फिरुल्लाह, कोई और जितने भी ये तौहीद के अलावा अकीदे हैं सब क्या है, झूठ है अल्लाह के ऊपर जितने तौहीद के अलावा है, वो यू नेम इट कोई भी है, चाहे वो कहता है कोई एथिस्ट है, वो कहता है कोई भी नहीं खुदा, ये भी झूठ है अल्लाह के ऊपर बांधना। क्योंकि अल्लाह रसूल की बात जो उन्होंने बता दी है उसको ना मानना, तो इसका मतलब है कि कोई और ही फलसफा लेकर आएगा, कोई और बात लेकर आएगा, और वो बात यकीनन खुद ही बनाई भी होगी, झूठ होगी, क्योंकि अल्लाह रसूल की बात सच्ची है, उनके अगेंस्ट जो भी खड़ा है वो झूठ कह रहा है। उलाय का युरादूना अला रब्बिहिम, ये लोग अपने रब के सामने पेश किए जाएंगे, वह यकूलुल अशहादु, और उस दिन कहेंगे गवाह, अल्लाह ताला गवाहों को भी खड़ा करेगा, और वो कहेंगे हा उला इल्लदीन कदबू अला रब्बी, उस दिन गवाह खड़े होकर कहेंगे ये लोग हैं जिन्होंने अल्लाह पे झूठ बांधा था। सोचें कि उस दिन ये जो जितने भी ये मुशरिक हैं अल्लाह के ऊपर झूठ बांधने वाले हैं, अल्लाह ताला की अदालत में अकेले नहीं खड़े होंगे, इनके सामने गवाहियां उनके खिलाफ लाई जाएंगी, और वो गवाह कौन होंगे, फरिश्ते गवाह होंगे, इनके किरामन कातिबीन गवाह होंगे, और भी फरिश्ते गवाह होंगे, और रसूल, उनका रसूल भी गवाह होगा, जिस कौम से भी वो थे, वो गवाही देंगे कि हमने इनको पहुंचा दिया था, हमने इनको बता दिया था, फिर भी इन्होंने ऐसा किया, अपने जिस्म के अज़ा भी गवाही देंगे, ये झूठे लोग हैं, इन्होंने अपने रब पे झूठ बांधा। अला लानतुल्लाही अला ज़ालिमीन, खबरदार सुन लो, अल्लाह की लानत है जालिमों पे, ये जालिम है। जालिम कौन होता है, जालिम का मतलब क्या, जो हकदार को उसका हक ना दे, इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल को उनका हक नहीं दिया, सबसे बड़ा हक तो अल्लाह का है, तो ये सबसे बड़े जालिम है, इन्होंने शिर्क किया। और उस दिन देखें लानत का मतलब क्या, अल्लाह की रहमत से दूर होना, उस दिन अल्लाह की रहमत की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि जिसको अल्लाह की रहमत मिल गई वो ही बख्शा जाएगा, जो अल्लाह की रहमत से ही महरूम हो गया तो वो तो फिर उसका अंजाम क्या होगा। और इनके सामने गवाहियां खड़ी हो गई, इनको पेश कर दिया गया, इनके खिलाफ गवाहियां आ गई, इनके पास क्या जवाब रहेगा फिर, तो इनकी पेशी ही नहीं होगी, सवाल जवाब भी उनसे होंगे, और आपको पता है वो हदीस के जिससे सवाल हो गया ना वो गया बस। अब ये जालिम कौन है, इनकी डेफिनेशन सुनी, अल्लदीना यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, ये रोकते थे अल्लाह के रास्ते से, ऐसी ऐसी बातें दीन में निकाल के ना, टेढ़ निकाल के, दीन में कोई टेढ़ नहीं है लेकिन ये निकालते हैं टेढ़पन, या बहुना है आईवा जा, और वो तलाश करते हैं इसमें टेढ़, ये उसमें से कई बातें ऐसी निकाल लेंगे, देखें अब ये क्या बात हुई कि औरत की आधी गवाही है, ये क्या बात हुई कि लौंडियों के साथ भी ताल्लुक कर सकते हैं, ये क्या बात हुई चार शादियों की, ये क्या बात हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी शादियां की हजरत आयशा से इतनी कम उम्र में, ऐसी यानी बातें निकाल के लेकर आएंगे जिससे लोग ना इस दीन से नफरत करें, लोग इस दीन के बारे में शक में पड़ जाएं। अरे ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, नए नए नुक्ते निकाल के लाएंगे लोगों को भटकाने के लिए, और आज तो ये ऐसे लोग इतने कॉमन है, इसलिए बहुत देखभाल के चलने की जरूरत है कि इन लोगों के चुंगल में ना फंस जाए। वह हम बिल आखरत ही हम काफिर, ये आखरत के इनकारी हैं, अगर इनको कोई ये वाकई इनका अकीदा होता ना आखरत का, तो कभी भी ऐसी बातें ना निकालते। आप इंटरनेट पे बैठे तो कितने लोग ऐसे मिल जाते हैं, खुद की भी टेढ़ी सोच है, खुद तो इस दीन से बाज आई आए, खुद तो इस रास्ते से हट ही गए, गुमराह हुए, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं, अस्तग़फिरुल्लाह। और फिर उसके बाद लोग इनकी बातों में आके सोचते हैं कि हाँ देखो ये बात तो ये सही कह रहा है, और ऐसे क्यों होगा, और फिर जब उठते हैं तो उनका ईमान ही चला गया होता। इसलिए केयरफुली अपनी किसी की बात सुने, हर एक की बात सुनने के काबिल नहीं है, इनको जाहिर है खौफे खुदा नहीं है कि हमें अल्लाह के सामने खड़े होना, क्योंकि आखरत पे इनका ईमान ही नहीं, इनकारी है आखरत के। उलाए कलम यकून मुआजिजीना फिल अर्द, यही लोग हैं कि ये आजिज करने वाले नहीं है जमीन में, यानी अल्लाह ताला को हरा नहीं सकते। ये ऐसी बातें करके, ऐसे मजाक उड़ा के, या दीन के ऊपर में शकुक व शुभात, डाउट्स डाल के लोगों के दिलों में, कभी कहते हैं अच्छा हम तो कुरान को मानते हैं बस, हदीस को मानते ही नहीं है, हम तो इसको कुछ समझते नहीं है। ये देखिए, ये जालिमों की डेफिनेशन हो रही है। ये रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से, उस सिराते मुस्तकीम से लोगों को रोकते हैं, टेढ़पन निकालते हैं अंदर। ये लोग अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते जमीन में। वमा कान लहुम मिन दुनिल्लाहि औलिया, और इनके लिए अल्लाह के सिवा कोई मददगार भी नहीं होगा। युदाफु लहुमुल अज़ाब, उनके लिए कई गुना बढ़ा दिया जाएगा अज़ाब, दुगना कर दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि खुद तो रुकते थे, दूसरों को भी रोका। इसलिए अल्लाह के दीन के अंदर इन्होंने शकूक व शुभात ऐसे पैदा कर दिए कि लोगों को, जो अच्छे भले लोग सीधे रास्ते थे, तो उनको भी हटा दिया। तो वो क्या समझते हैं कि ये लोगों को भटकाना शुरू किया तो पता नहीं अल्लाह पे भी नाउज बिल अपना कोई जोर चला देंगे। अल्लाह को ये आजिज नहीं कर सकते, यानी अल्लाह की पकड़ आएगी इनके ऊपर, अल्लाह ताला इनको पकड़ेगा। मा कानू यस्ततियून अस्समा वमा कानू यबसिरून, नहीं थे वो इस्तात रखते सुनने की और ना थे वो देखते। अल्लाह ताला ने तो ये फैकल्टीज दी थी, कान भी दिए थे, आंखें भी थी, लेकिन उन्होंने ना कानों से सुना ना आंखों से देखा। यानी अल्लाह ताला की तो निशानियां थी, अल्लाह का कलाम भी था, सुनते देखते तो हक बात समझ आ जानी थी, लेकिन ये तो बहरे गूंगे बन के रहे, क्योंकि हक सुनना इनको पसंद ही नहीं होता ना, सुनना ही नहीं चाहते। आप उनको जितनी मर्जी तावीलें दें, बताएं बातें, नहीं, उन्होंने बस उसको एक चीज को पकड़ के उसके ऊपर ही चल रहे होते। उलाएक अल्लदीना खसिरू अनफुसहुम वदल्ला अनहुम मा कानू यफ्तरून, ये लोग हैं, इन्होंने खसारे में डाला अपनी जानों को, और गुम हो गए इनसे जो वो खड़ा करते थे। कयामत के दिन इनको ना कोई बात आएगी नहीं, फिर बड़ी बड़ी यहाँ पे इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं बहुत, और इनमें अक्सर लोग, ये ज्यादातर उनमें नहीं होते जो अनपढ़ लोग होते हैं, या ये ज्यादातर वो लोग होते हैं बड़े बड़े पढ़े लिखे, बड़े जहीन, बड़े जी फलां PhD है इनके पास, इनके पास ये, और उसके बाद उनकी बातें ये होती हैं। और आजकल यूथ के पीछे तो बहुत ही हाथ धो के पड़े हुए हैं, क्योंकि यंग लोग ज्यादा जल्दी जज्बाती भी होते हैं, ज्यादा जल्दी बातों में आ जाते हैं, और उनको अपने दीन का भी नहीं पता होता। तो इनके पास ऐसी ऐसी दलीलें निकाल के लेकर आते हैं ना, और जुबान के भी तेज होते हैं, अल्लाह अकबर, लेकिन वहां जाके कोई जुबानें नहीं चलेंगी, वहां पे इनसे सब गुम हो जाएंगे। बड़ी दलीलें यहाँ पे देते हैं लोगों को, बड़े नुक्ते निकालते हैं, वो पॉइंट्स कहाँ गए उनके, वहां पे तो उनको कुछ भी नहीं याद आएगा। ला जरमा अन्नहुम फिल आखरति हुमुल अखसरून, कोई शक नहीं कि आखरत में ये सबसे ज्यादा खसारा पाने वाले होंगे। जो यहाँ पे बड़ी अपनी अकलें दौड़ाते हैं ना, वहां पे देखो, ये इसका मतलब दुनिया में देख के किसी को हम ये नहीं सोच सकते, यहाँ पे तो गधा घोड़ा सारे ही बराबर हुए में, यहाँ पे नेक और बद, ईमानदार बेईमान, झूठा सच्चा, सब एक साथ ही मिले में, समझ ही नहीं आती। सभी बड़े फ्लरिश करते हुए नजर आते हैं, बड़े कामयाब हैं, आप ये देख के ना सोचें कि इसका बड़ा नाम है, बड़ा कामयाब है, ये तो बड़ा पॉपुलर है, इसके इतने फैन है, इसकी इतनी फॉलोइंग है, बड़ा चर्चा है इसका, नहीं, ये मयार नहीं है। अल्लाह अकबर, आखरत में ये अखसरून होंगे, सबसे ज्यादा खसारा पाने वाले। इन्नल्लदीना आमनू व आमिलुस सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए। और एक और खूबी यहां पे बताई गई, वह अखबतु इला रब्बिहिम, ये पहले नहीं हमने पढ़ी, और उन्होंने आजी की अपने रब की थी। अखबतु, खबत कहते हैं नशे भी जमीन, नीचे की तरफ को जाना। जब हम नीचे को जा रहे थे तो कैसे जाते हैं, तेजी से जाते हैं ना, आपको कोई जोर लगा लगा के तो नहीं जा रहे थे, तेजी से नीचे उतर रहे थे। ये लोग वो हैं जो आजी करने वाले, जी अल्लाह ताला का कोई हुक्म आ जाए, इन्होंने ये नहीं कहना इसमें क्या भलाइया और उसमें क्या वो है और उसमें क्या लॉजिक है, और पहले हम मशवरा करेंगे अपने वालों से, और पहले हम सहाबा तो ऐसे मशवरे नहीं करा करते थे, वो तो समय ना वाता ना करते थे। तो ये वो लोग हैं जो जल्दी से मान जाते हैं अल्लाह की बात को, जल्दी से फौरन झुक जाते हैं, गिर पड़ते हैं, सोच सोच के नहीं चलते, फूं फूं के नहीं कदम रखते, वो कहते हैं अल्लाह ताला की बात है बस, हमने मान ली। उसके उनको कोई नुकसान की फिक्र थोड़ी है, उनको पता है कि जो अल्लाह ने मेरे लिए हुक्म दिया हुआ उसमें ही मेरे लिए बेहतरी है। अपने आप को झुका देने वाले, टूट जाने वाले अल्लाह के हुक्म के आगे, अपनी मर्जी छोड़ देने वाले, कोई तकब्बुर नहीं है, कोई अना नहीं है। तो ये इखबात है, ईमान, नेक साले अमल और इखबात। जब इंसान अल्लाह को पहचान जाता है ना कि अल्लाह तू कौन और मेरी क्या हैसियत और मेरी क्या अकल और मेरी क्या समझ, अल्लाह मैं क्या चीज हूं, तो फिर वो झुक जाता है अल्लाह के आगे। इसीलिए आजी है, और आजी सिर्फ ये नहीं कि बस हम कहें बड़े गुनाहगार हैं, बड़ी आजी है मेरे अंदर। आजी ये है कि इंसान अल्लाह के हुक्मों के आगे आजी इख्तियार करे कि मैं क्या चीज हूं, अल्लाह का हुक्म आ गया, आजी से उसको मानने के लिए तैयार हो जाए, जैसे कि एक गुलाम होता है। अगर आप देख लें कि कितनी सारे अल्लाह के अहकामात हमारे सामने आते हैं, लेकिन हम इसलिए ना उनको मानते कि हमारे अंदर आजी नहीं होती। हमें ये होता है कि हमारे हमारी आन बान शान, हमारी इज्जत लोगों के अंदर, हमारा मकाम है लोगों के अंदर, तो फिर वो हम कैसे उन ये मान के और फिर उनके आगे मेरा मकाम खराब हो जाएगा। हालांकि आजी के लिए टूटना पड़ता है, झुकना पड़ता है कि रब बड़ा है और मुझे अपनी शौक और अपनी बातें छोड़नी पड़ेंगी, लेकिन वो नहीं हम छोड़ पाते ना। तो अखबतु इला रब्बीहिम, वो आजी करते हैं लोगों के आगे नहीं, अपने रब के आगे, उसके हुक्मों के आगे। उलाए का असहाबुल जन्ना हुम फीहा खालिदुन, ये जन्नत वाले हैं और ये हैं हमेशा रहने वाले जन्नतों में। मसलुल फरीकैन, इन दोनों फरीकों की मिसाल, ये जो वो गुजरे जो जालिम है, जो जालिम जिन्होंने ये सारे लोगों को रोकते थे अल्लाह के रास्ते से, टेढ़पन निकालते थे, बहरे गूंगे बने हुए हैं और ऐसे काम इन्होंने करे, वो और ये जो ईमान ला के साले अमल करके और आजी के साथ अपने रब के आगे झुकने वाले हैं, सिर्फ रुकू में नहीं, जैसे मैंने आपको बताया सबसे बड़ी झुकने की बात यह है कि अल्लाह के हुक्म के आगे आप झुक जाएं और कहें कि मैंने अल्लाह सुन लिया तो मैंने मान लिया। ये नहीं कि बनी इसराइल की तरह समेना व आसईना। तो इन दो ग्रोह की मिसाल ऐसी है अल्लाह के नजदीक, कल आमा वल असम वल बसीरी वसमी। देखें दो तरह के लोग हैं, ये जो जालिम है ना वो ऐसे हैं कल आमा अंधे वल असमी और बहरे, और जो दूसरे हैं ईमान ला के साले अमल करने वाले और अल्लाह के आगे आजी करने वाले, वो ऐसे हैं जैसे देखने वाला और सुनने वाला। क्या दोनों बराबर हो सकते? हल यस्तवी यानी मसला, क्या इनकी मिसाल बराबर हो सकती? एक अंधा बहरा है और एक देखने वाला है, आप बताएं इनको दोनों को आप बराबर करेंगे कहेंगे? नहीं ना। तो कभी भी कोई काम जो नेकी का करने वाला और जो आजी से अल्लाह के आगे झुकने वाला, वो और ऐसे लोग बराबर नहीं हो सकते। समझ आए? जो अंधा बहरा बना हुआ है, ना हक देखता है ना हक को सुनता है, वो अपनी रविश पे चल रहा है। तो अंधे बहरे वो लोग हैं जो ना अल्लाह की बात को सुन के और मानने को तैयार होते हैं, ना उसकी निशानियों को देख के कोई सबक लेने को तैयार होते हैं। अफला तदक्करून, फिर तुम क्या नसीहत पकड़ोगे? तुम क्या कोई सबक लोगे इस बात से कि तुमने अंधे बहरे बनना है या देखने वाले और सुनने वाले? ला यस्तवी असहाबुन नारी व असहाबुल जन्ना, असहाबुल जन्नति हुमुल फाइसून, जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर नहीं होते। जन्नत वाले हैं जो कामयाब हैं, अगर यहां नहीं आपको पता चल रहा ना, लेकिन आखरत की उस हशर के मैदान में अच्छी तरह पता चल जाएगा। यहां पे अगर आपको सब रले मिले एक जैसे नजर आ रहे हैं ना, वहां पे ऐसा नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सबको इन कामयाब लोगों में शामिल फरमाए जो ईमान ला के साले अमल करके और आजी से झुकने वाले हों उसके आगे। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون